प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 14 जुलाई 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं देवेंद्र कुमार तिवारी, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरे साथी हैं सुप्रिय मणि शुक्ल, आप मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं। तो देवेंद्र और सुप्रिय आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्रम है बधाई देने का और आज की यह बधाई आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और मैं अपनी ओर से दे रहा हूं शाश्वत अग्रवाल को जो वाराणसी के रहने वाले हैं और उन्होंने एनडीए की 2016 का एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने मेल से सूचित किया है कि उनकी इस सफलता में डेली ऑडियो गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो शाश्वत, इसके लिए आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो लाइफ मैनेजमेंट का है, और कल के ही बात को थोड़े से मैं और अलग तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको ध्यान है फ्रेंड्स कि परसों मैंने चार्ल्स डार्विन के जीवन के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाए थे और इसके बाद कल हम लोग जो बात कर रहे थे वह इस पर थी कि किस तरीके से जीवन के लिए बहुत ज्यादा साजो सामान जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास जो कुछ भी है, और सच पूछे तो हमारे पास बहुत कुछ है अगर हम उनकी अहमियत को समझ लें और समझकर उनका प्रॉपर तरीके से यूज करें तो हम कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है मित्रों कि मैं ब्रह्म हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद ने यही कहा है कि तुम नहीं मत कहना क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान हो जब वो कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपनी क्षमताओं को आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने से ही बात नहीं बनेगी, उसका उपयोग भी करें। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास बड़े शानदार बीज हैं और उस शानदार बीज को आप एक शानदार सोने के कलश में बंद करके और अपने घर के सोने की अलमारी में रख दीजिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आपके पास सर्वोत्तम बीज हैं और आपने उसको सहेज कर भी बहुत अच्छे महंगे से महंगे और सुंदर से सुंदर पात्र में रखा है, लेकिन नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है। मित्रों, आपको इन सब चीजों को समझना ही पड़ेगा। अगर आपको बीज से दरख्त बनाना है तो क्या करना होगा? उस बीज का इस्तेमाल करना होगा, उस बीज को जमीन के अंदर डालना होगा, और डालने से ही बात नहीं बनेगी, फिर उसे पानी भी देना होगा, उसे रोशनी भी उपलब्ध करानी होगी, उसे ऊष्मा ताप प्रोवाइड करना होगा, तब फिर जाकर के वो बीज संघर्ष करेगा। ऐसा नहीं कि बीज अब कुछ नहीं करेगा, बीज को भी संघर्ष करना पड़ेगा और वो उसका ये जो संघर्ष होगा वो जमीन की पपड़ी के खिलाफ होगा, वो जमीन को तोड़ने के लिए संघर्ष करेगा। और फिर जमीन को तोड़ने के बाद जैसे ही वो ऊपर आएगा फिर उनकी जड़ों को जमीन में धंसने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि उसको जमीन के अंदर पहुंचना है। अंधेरे की यात्रा और रोशनी की यात्रा दोनों उसे एक साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर के वह बीज जिसमें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आप देखिए कि कितना बड़ा दरख्त, कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो मित्रों, हम बीज से जब वृक्ष बना लेते हैं तो उस पर हमें आश्चर्य नहीं होता, बिल्कुल आश्चर्य नहीं, हम लगता है कि ये तो होना ही था। लेकिन जब हम अपने जीवन में जो ढेर सारे बीज हैं या दूसरों में हम देखते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था और आज ये इतना बड़ा बन गया, अरे यार ये तो बिल्कुल लल्लू लाल था, पढ़ने में भी ऐसे ही था और ये सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गया, अच्छा इसको तो बोलना नहीं आता था और ये एक्टर बन गया, हम इस तरह की चीजें सुनते हैं, खुद भी बताते हैं, क्योंकि कुछ बहुत से मामलों के तो हम प्रत्यक्षदर्शी भी होते हैं। तो इनफैक्ट हम ये भूल जाते हैं कि जब बीज से किसी पौधे का निकल आना हमें आश्चर्य नहीं करता है, तो यहां आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये भी उसी का ही प्रतिरूप है, अन्य दूसरा कुछ भी नहीं है। सिद्धांत एक ही है कि जो सफलताएं हैं वो छिपी हुई होती हैं, बस आपको उनको साकार करना पड़ता है। जैसे वृक्ष छिपा हुआ है, आपको साकार करना पड़ता है। और वो साकार कैसे होगा, वो आपके अंदर है। साकार कहां से होगा, वह भी आपके अंदर है, बस आपको केवल उसे समझना पड़ता है। और मुश्किल ये है दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो जब समझाया भी जाता है, ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, जब समझाया भी जाता है तब भी लोगों के समझ में नहीं आता और शिकायत बनी रहती है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और फिर वो दूसरी चीजों की एक लिस्ट थमा देते हैं कि इस वजह से नहीं हो पा रहा है, और अगर ये चीज दे दी जाए तो हो जाएगा, और अगर उनको वो चीज दे दी जाए तो क्या समझते हैं कि हो जाएगा। नो, इस गलतफहमी में मत रहिए, वो उनके चरित्र का अभिन्न अंग बन चुका है। जो है उसे रिजेक्ट करना और जो नहीं है उसे आमंत्रित करना, और अगर वो आमंत्रित की हुई चीजें मिल गई तो फिर उसे डस्टबिन में डाल देना और फिर एक नई लिस्ट तैयार कर लेना आमंत्रण के लिए कि ये चाहिए। तो मित्रों, सवाल चरित्र का है, सवाल रहस्यों का नहीं है, सवाल मेहनत का भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है फ्रेंड्स, वो करेक्टर का होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर चलिए मैं आपको बताऊं कि कल मैं डेटा देख रहा था दोस्तों, चारों मॉक टेस्ट जो एकेडमी को डालने थे प्री एग्जाम के लिए, तो सभी चार मॉक टेस्ट डाल दिए गए प्री के लिए। अब जब मैं वो डेटा देख रहा था, तो वो डेटा आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, बड़ी मजेदार चीज है, और इसको आप, इस पर जो भी बात अभी मैंने की है उस पर आप इसको कसिए, अप्लाई कीजिए, राइट मित्रों। ये इसके भी डेटा हैं कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है वो हजारों लाखों लोगों के द्वारा सुना जा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को ही सुनते हैं, हालांकि ज्यादातर मुझे यही फीडबैक मिलता है कि वो पूरे को सुनते हैं, लेकिन उनका संबंध कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से नहीं होगा। लेकिन जितने भी सुन रहे होंगे उसमें से 90% तो स्टूडेंट ऐसे ही है जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से ही इसे सुनते हैं, बट नेचुरल है कि उन्हीं के लिए स्पेशली है भी, दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। तो मित्रों, जो मॉक टेस्ट चारों डाले गए हैं उसके आपको मैं अपडेटा बता रहा हूं कि कितने लोगों ने इस बीज को जमीन में रोपा है। मात्र 3000 स्टूडेंट, ये डेटा है, मतलब 3000 स्टूडेंट ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को दिया है। उसमें स्कोर देखिए, इसमें मित्रों बिलो 45% स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं 2550 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बिलो 45% है, बिलो 45%। इसके बाद दोस्तों, जो 45 से 60% के जो स्कोर किए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, उनकी संख्या है 171, और 60% से एबव, उसमें कुछ लोगों ने 80% भी स्कोर किए हैं, 60% से एबव जो स्कोर है वो है नियर अबाउट 200, राइट। तो मित्रों, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसी तरीके से। आपके पास कुछ नहीं है तैयारी करने के लिए, चलिए ठीक है, आप कोचिंग में नहीं जा सकते, आप छोटी जगह पर रह रहे हैं, बहुत लोग जो होते हैं वो इंग्लिश को लेकर के करते हैं कि साहब हम अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ये भी बहुत बात आती है, हमारे पास अखबार नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं, पता नहीं क्या क्या लिस्ट तो वो थमा देते हैं। तो दोस्तों, ये लाखों की संख्या में 3000 लड़के, जो चीज प्रोवाइड की गई है आपको, एक चीज दी गई है, और आप अभी सिविल सर्विस प्री में बैठने वाले हैं, और अगर नहीं भी बैठने वाले हैं, आप नेक्स्ट ईयर बैठने वाले हैं, या आप स्टेट सिविल सर्विस में बैठने वाले हैं, बैंकिंग में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, अंततः एक बीज आपको प्रोवाइड किया गया है। अब सवाल यह है कि इस बीज पर भरोसा करके आप इसका इस्तेमाल कितने कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी संख्या है मित्रों 3000, केवल 3000। अब आप देखते जाइए, जो कहते ना कि सिविल सर्विस में बहुत भीड़ है और 10 लाख लड़के बैठते रहते हैं, ये 10 लाख लड़के डेटा में सही बात है, फॉर्म भरते हैं, बैठते 5-5.5 लाख है, लेकिन उन 5.5 लाखों की भी सच्चाई जानिए। जो यहां मॉक टेस्ट में अपीयर होने वालों की सच्चाई है दोस्तों, वही सच्चाई सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वालों की भी है, और वही सच्चाई जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने वालों की है। एक पैरोटो हुए हैं, उन्होंने 80-20 का सिद्धांत दिया था। 80-20 का सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो 20% लोग होते हैं, 20-80 कह लीजिए, 20% लोग होते हैं वो 80% काम करते हैं। जैसे आपका सिलेबस में से पता लगा कि 20% जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसमें से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट करती है उसमें से 20% प्रोडक्शन ही उसका ऐसा रहता है जिससे कि 80% रेवेन्यू आता है। तो मित्रों यहां भी वही आपको दिखाई देगा कि सही मायने में केवल 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सो कॉल्ड सही तरीके से। तो दोस्तों लाखों की संख्या में 3000 लोगों ने टेस्ट दिया और उसमें से 45% का जो स्कोर है, 45% बिलो 45%, 2550 मतलब मेजर पोर्शन बिलो 45। अब आपको सोचना होगा कि ये बिलो 45 क्यों है। आप खुद को ऐसा रिव्यू कीजिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिन्होंने अभी नई नई तैयारी शुरू की है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड के हैं और 6 महीने से तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी तो 2-3 साल से कर रहे हैं लेकिन रेगुलर नहीं है। क्योंकि मित्रों ज्यादातर क्वेश्चंस जो तैयार किए गए हैं वो करेंट अफेयर पर बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे हैं जो बिल्कुल सब्जेक्ट पर बेस्ड है लेकिन ज्यादातर करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं। अगर उसमें से आपको सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लीजिए, अगर उसमें आपको सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है तो करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। तो साफ लगता है कि ये जो 45% से जो कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं वे स्टूडेंट हैं जो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में कंटिन्यू नहीं है, जो अखबार पढ़ने के बारे में कंटिन्यू नहीं है। साफ समझ में आता है, क्योंकि मित्रों आपके ही ग्रुप में 200 लड़के 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एबव 60% स्कोर कर रहे हैं, एबव 60%। तो ये जो 200 स्टूडेंट हैं, सच पूछे तो ये वो ईमानदार स्टूडेंट हैं जो सही मायने में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको जो अपनी कीमत को पहचानते हैं, अपने वस्तुओं की वैल्यू को जानते हैं, जो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है उसको बहुत महत्वपूर्ण समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं, ये वो लोग हैं। और नो डाउट कि 45% से जो एबव और 60% के बिलो रह गए हैं वो थोड़े से मीडियम वाले में हैं, वो उतने कंटिन्यू नहीं होंगे जितने कि 200 वाले कंटिन्यू हैं, या कंटिन्यू होंगे भी तो उतने सीरियस नहीं होंगे, चीजों को उस तरीके से नहीं ले रहे होंगे जिस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो मित्रों आपको नहीं लगता कि यही चीज सिविल सर्विस के एग्जाम के टोटल लास्ट सिलेक्शन में भी बिल्कुल यही फार्मूला काम करता है? और सिविल सर्विस के ही में क्यों, जिंदगी में यही फार्मूला काम करता है। दोस्तों ये मॉक टेस्ट कितनी मेहनत के बाद बनाए गए हैं और साल भर तक लगातार बनाते जाते रहे हैं, ये 5 दिन में बैठ करके नहीं बनाए गए हैं, ये समय समय पर फ्रेम किए जाते रहे हैं। आपको उपलब्ध करा दिया गया है गन्ने का रस एक ग्लास में डाल करके, आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि उस गन्ने के रस को जो आपको केवल 10 रुपए में एक ग्लास प्रोवाइड कर दिया गया, और यहां तक कह लीजिए फ्री में प्रोवाइड किया गया है, किसान ने उस गन्ने के साथ कितनी जद्दोजहद की है, कितनी मेहनत की है वो दिखाई नहीं देता और फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। मित्रों यही जिंदगी के सारे क्षेत्रों में होता है। तो कल इत्तफाकन मैंने ऐसे ही डेटा पूछ लिया क्योंकि चारों टेस्ट डाले जा चुके थे, तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये मिला। दोस्तों इसी के आधार पर खुद को रिव्यू कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, अपनी कमजोरियों को पकड़िए। अगर आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में, एटलीस्ट सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में, अगर आप डेली ऑडियो गाइडेंस या डेली ऑडियो गाइडेंस को छोड़ भी आप दें, न्यूज़पेपर न्यूज के बारे में अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। और मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप डेली ऑडियो गाइडेंस के साथ 35 मिनट गुजारने का नियम बना लेते हैं तो कुछ महीनों के बाद, लगभग लगभग पूरे 1 साल के बाद, तो मैं कह सकता हूं जब एग्जामिनेशन का पूरा एक राउंड हो जाता है या डेली ऑडियो गाइडेंस का राउंड हो जाता है, नॉलेज के लेवल पर, मानसिक क्षमता के लेवल पर, सोचने समझने के स्तर के लेवल पर, एनालिटिकल पावर के लेवल पर, यू वुड बी टोटली डिफरेंट पर्सन। आप बिल्कुल अलग एक व्यक्ति होंगे, एक अलग विद्यार्थी होंगे। हाँ, कौन कितना अलग हो सकता है ये फिर इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इसको सुन कैसे रहा है और बताए गए इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो कर रहा है और फिर उन्हें सही मायने में कितना संजोकर रख पा रहा है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मित्रों, मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इशारे से बता दूं, एक तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक संवैधानिक घटना घटी है, जिसमें जो दिसंबर में आज से लगभग 6-7 महीना पहले, 7 महीने पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया है। दूसरी जो घटना है, वो घटना नहीं न्यूज कहना चाहिए, वो खासकर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, कैबिनेट ने फैसला किया है कि आने वाले 4 सालों में 1 करोड़ लोगों को कौशल विकास, कौशल शिक्षण दिया जाएगा। आने वाले 4 सालों में 1 करोड़ लोगों को, और उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीसरी जो खबर थी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की खबर थी। चौथी, दक्षिण चीन सागर में जो है, आपको मालूम है कि ताइवान ने अपनी युद्धपोत भेज दिए हैं। फिर आपको यह भी मालूम है कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, और फिर दक्षिण सूडान की घटना। तो इन पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। इसमें नो डाउट फ्रेंड्स की जो सबसे बड़ी घटना है सिविल सर्विस के एग्जाम की दृष्टि से, अपने आप में जिसे आप कंप्लीट टॉपिक कहेंगे, वह अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के, या राष्ट्रपति ही कहेंगे, हालांकि वो केंद्र सरकार ही है, केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक ठहराया है। आपको मालूम है कुछ ही महीने पहले जो यहां घटना हुई थी आपके उत्तराखंड में, उसे असंवैधानिक ठहरा करके, और फिर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो वहां किसी का बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो विधानसभा के अंदर होना चाहिए, सदन में होना चाहिए, सदन के बाहर नहीं। और वहां से फिर से जो सरकार हटाई गई थी वो फिर से सत्ता में आ गई थी। इसके बाद इससे पहले भी हुई है, बिहार वगैरह के मामले में ऐसा हुआ, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा जो तीखी प्रतिक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट की रही है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से तो संविधान की, मतलब एक तरीके से हत्या ही की जा रही है, फिर लोकतंत्र कहां है। और खासकर राज्यपाल के काम पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, वो वाकई में काफी तीखी हैं और चिंतित करने वाली। चिंतित करने वाली ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया, चिंतित करने वाली इस मायने में कि हमारे जो राजनीतिक निर्णय हैं या राजनीतिक हमारे जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके की होती जा रही है इसको लेकर के। मित्रों, अब मैं इसके डिटेल पर मैं नहीं जा रहा हूं कि क्या घटना हुई थी, क्या घटना नहीं हुई थी। वो घटना आपके अखबारों में आप पढ़ ही लेंगे, पढ़ ही चुके होंगे, और फिर अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से अखबारों से जुड़े हुए हैं तो वो सारी बातें आपको मालूम भी हैं, तो उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर को उठा करके देखें, और पिछले खासकर 3 साल के, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो आपको हर साल, लगभग हर साल, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, या पॉलिटी का फेडरल स्ट्रक्चर है, पॉलिटी का न कहे, हमारे जो प्रशासन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। मैंने ये देखा है, लगभग पूछ लिया जाता है। हम लोगों के समय में भी यही होता था, मैं आपको 35 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस समय भी फेडरल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है बहुत, एक तो इंपॉर्टेंट है नो डाउट स्ट्रक्चर के हिसाब से, और दूसरा इसके क्वेश्चन पूछे जाने का कारण यह होता है कि फ्रेंड्स, कि इस फेडरल स्ट्रक्चर पर लगातार बड़े अलग अलग किस्म के दबाव हमेशा चलते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहां बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। हम पार्टियों पर नहीं जाते, ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार है तो कहा जा सकता है कि ये दोनों, जो उत्तराखंड और अरुणाचल का मामला है, ये बीजेपी की सरकार के कारण ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, 120 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और पूरे समय में बीजेपी की सरकार नहीं रही है, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार भी लगभग लगभग यही चीज करती थी। और 1994 का जो बोम्बई मामला है, जो खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इस बारे में, वो एक तरह से आप कह लीजिए कि कानून का काम करता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको लगातार हम कोट करते हैं, आप आज का एडिटोरियल कमेंट किसी का पढ़ेंगे तो वो भी बोम्बई केस के मामले में बात करेगा, आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो भी बोम्बई केस के बारे में बात करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि इसका जो फैसला है वो सदन में होना चाहिए, सदन से बाहर नहीं। तो चूंकि 356 जो राष्ट्रपति शासन लगाने वाला जो अनुच्छेद है मित्रों, इसका इस्तेमाल होता ही रहता है, उसको लेकर के फिर विवाद उठता है, और इसीलिए वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा करेंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होती है, सिचुएशन तो वही नहीं होती बिल्कुल ज्यों की त्यों, ये बात अलग है कि निर्णय वही होते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसकी प्रक्रिया वही होती है कि पहले राज्य का गवर्नर केंद्र को रिपोर्ट भेजेगा कि ये हालत है, उस रिपोर्ट पर फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को संस्तुति कर देगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। प्रक्रिया तो वही है क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जो स्थितियां होती हैं वो एक सी नहीं होती, और उन स्थितियों के संदर्भ में फिर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ये हर साल होता है लगभग लगभग। मैं आपको थोड़े से एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप स्थितियों को समझ सकें। देखिए, अगर संघवाद पर प्रश्न पूछ लिया गया है, मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर पर, तो ये नहीं कि उसका जवाब एक ही जैसा होगा, जैसा कि जनरली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपसे गड़बड़ी हो जाएगी, आप सटीक उत्तर नहीं दे सकते। मित्रों, इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी घटना आइंस्टीन की सुनाना चाहूंगा, जो आपकी सिविल सर्विस पर बहुत अप्लाई करेगी, और खासकर उस टॉपिक पर तो करेगा ही जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। आइंस्टीन ने क्वेश्चन पेपर दिया जब प्रिंसटन कॉलेज में थे अमेरिका में, और इसके बाद कॉलेज में हल्ला मच गया कि उन्होंने पिछले साल के ही क्वेश्चन पेपर को इस साल रिपीट कर दिया था। तो साहब, कमेटी ने उनको बुलाया, जो भी उनके कॉलेज की जो भी प्रणाली होगी यूनिवर्सिटी की, कि बोले कि आइंस्टीन, तुमको पता है कि तुमने पिछले साल के क्वेश्चन को पेपर को ज्यों का त्यों रिपीट कर दिया है? तो आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। तो पूछा गया कि मालूम है तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों? तो आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, प्रश्न तो वही है लेकिन उत्तर बदल चुके हैं। याद रखिए कि संघवाद पर प्रश्न तो आता रहेगा लेकिन उत्तर बदल चुके होंगे। उत्तर कैसे बदलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला है, संदर्भ को ध्यान में रखना पड़ेगा, परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मित्रों, चूंकि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो लगातार सहकारी संघवाद की बात करते हैं, आप देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। चूंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत अच्छे से राज्यों की जरूरतों को जानते हैं, इसलिए वो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास है, और वो राज्यों को बराबर अधिकार देने के पक्ष में है। और आपने देखा है कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व में भी उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ा करके काफी कर दी गई है। तो कहीं हो भी रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है, तो ये संदर्भ सब बदल गए हैं। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में संदर्भ की बात कर रहा था। तो मित्रों देखिए, 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा सही उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। 2015 का क्वेश्चन देखिए कि हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है, जो मैंने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कही, विद्यमान संरचना में असुविधाओं क्या है, मैं इंग्लिश में देखता हूं, असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। मित्रों मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली इम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्ट कमिंग। हाँ, कमियों को कह लीजिए विद्यमान साम्राज्य में। अब आप देखिए कि वो दे रहे हैं कि जो सहकारी परिसंघवाद है, अभी जो सारा का सारा सिस्टम है उसको देखते हुए ये कहां तक फिजिबल है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस तरीके की बातें होंगी, उसी को लेकर के वो उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब आप 2014 का देखिए, मैं केवल आपको एक झलक दिखा रहा हूं मित्रों, जल्दी जल्दी में, यदि यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए। दो द फेडरल प्रिंसिपल्स इज डॉमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन्स इन फेवर ऑफ ए स्ट्रांग सेंटर, ए फीचर दैट मिटिगेट्स अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्ट्रांग फेडरलिज्म डिस्कस। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म पर लगातार हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, आप लोग देखिएगा तो 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपको सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन वो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछा गया है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो घटना घटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है और उसके जो वर्तमान संदर्भ हैं, इन पर आपका बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ, चूंकि राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तो आपको राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर अलग से एक नोट मतलब अलग से उस पर ध्यान देना होगा कि राज्यपाल से कहां गलती हुई और राज्यपालों को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या सुधार हो सकते हैं राज्यपाल के कार्यप्रणाली में, क्या संवैधानिक परिवर्तन किए जाने चाहिए, इन सब पर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। मित्रों, एक जो अगली खबर थी कि सरकार ने 4 साल में 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का फैसला किया, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देखिए, एक आंकड़ा है, बस इस आंकड़े को आप ध्यान में रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कौशल विकास पर इस तरीके से चीजें नहीं पूछी जाएंगी। जैसे अगर आप 2015 के ही थर्ड पेपर को उठा करके देखें तो कौशल विकास पर एक क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो झुकाव, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, सीधे सीधे नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में बनाइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है, तर्क सम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। तो कौशल विकास पर सीधे सीधे उस तरीके से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जैसा कि स्टेट सिविल सर्विस में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये एक डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि 4 साल में 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड करने की बात है और जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। कि तर्कसम्मत दलील तो तभी होती है मित्रों जब आप कुछ कंटेंट दे सके, ठोस कंटेंट दे सके जो कल्पना पर आधारित न हो। मित्रों, फिर अगली खबर आपने सुनी कि इंग्लैंड में जो पीएम बनी है वो थेरेसा मे हैं और मार्गरेट थैचर के बाद वो इंग्लैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। मतलब सोच के देखिए कि इतना पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री और इतना एडवांस्ड भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्री भी है और वहां पर दूसरी बार अभी महिला प्रधानमंत्री, मतलब कोई दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन पाई है। मतलब हालांकि आप देखेंगे भारत की इस बारे में आप तारीफ कर सकते हैं कि आजादी के तुरंत बाद भारत ने सभी को मताधिकार दिया जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने तो कुछ ही साल पहले मताधिकार दिया, मतलब 101 साल हो गए होंगे, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजादी के बहुत सालों के बाद महिलाओं को मताधिकार दिया गया। और भारत में आप देखिए कि आजादी हमको 1947 में मिली और मिसेस गांधी 66 में, शायद 68 में प्रधानमंत्री हमारे देश की हो गई थी, एग्जैक्ट ईयर लेकिन इसी के आसपास प्रधानमंत्री हो गई थी। मतलब उस भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीलंका में महिला प्रधानमंत्री होंगे, बांग्लादेश में महिला प्रधानमंत्री हो गए, इन सब ने बहुत जल्दी महिला प्रधानमंत्री अपने यहां बना। और ब्रिटेन में तो क्या कहते हैं, अमेरिका में तो अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति ही नहीं बन पाई है। देखिए, इस बार शायद कैंडिडेटशिप उनको मिल जाए और शायद हिलेरी क्लिंटन बन जाए, लेट अस सी। तो ये एक विश्लेषण के लिए चीजें होती हैं, आपके ध्यान में चीजें होनी चाहिए कि क्या किस तरीके से चीजें शेप लेती हैं। मित्रों, तेरेसा में अब देखिए, पहले गृहमंत्री रही हैं इंग्लैंड की, आपने पढ़ा है, और बड़ी लौह महिला मानी जाती हैं, जैसे कि मार्गरेट थैचर को भी आयरन लेडी कहा जाता था, बहुत ही दमदार महिला थी। और अभी आप जो लिबरलाइजेशन का दौर देख रहे हैं, उदारीकरण का दौर, विश्व उदारीकरण का दौर, सच पूछे तो उसमें जो मार्गरेट थैचर है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्हीं की पॉलिसी से निकला ये थे। और एक अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने, दोनों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। मित्रों, एक जो खबर थी दक्षिण चीन सागर की बात हम लोगों ने कल की थी, मैंने कल आपको आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए थे, आज भी मैं कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देखिए कि अब इस क्षेत्र में किस तरह से एक मिलिट्री एक तनाव बढ़ता जा रहा है और ताइवान ने तो अपने युद्धपोत भेज ही दिए हैं, चीन पर एक नैतिक दबाव है, देखते हैं कि अब मामला क्या रूप लेता है, है ना। बस इस पर आप थोड़ा सा नजर रखिए। दक्षिण सूडान में भारत ने अपने जो वहां भारतीय बसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, वहां से लाने के लिए संकट मोचन अभियान शुरू किया है। आपको केवल यह ध्यान रहना चाहिए कि जो संकट मोचन है ये किससे रिलेटेड है, तो सूडान में रह रहे भारतीयों को, दक्षिण सूडान में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए। सूडान में जो हो रहा है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक तरीके से कह लीजिए कि दो कबीलों की आपसी लड़ाई है और 2011 में 5 साल पहले ही दक्षिण सूडान एक तरीके से आजाद हुआ था, बना था, लेकिन दो कबीलों की आपसी लड़ाई के कारण लगातार इस तरह के गृह युद्ध में फंसा हुआ सा है और उसकी स्थिति खराब ही होती जा रही है। तो मित्रों, AIR न्यूज से इतना ही, और जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। इसमें एक मेरा आर्टिकल दैनिक जागरण में छपा था, कुछ जगहों पर वो कल भी प्रकाशित हो गया था जहां से मुझे स्टूडेंट्स के मेल से पता लगा। ये खासकर जो एक सिचुएशन बन रही है इसमें आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसमें आप कला और संस्कृति की जो स्थिति हो सकती है आप उसकी खोज उसको भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ये वो स्टाइल है थोड़ी सी जो आपको निबंध लिखने में सहायक होगी, तो इस लिहाज से मैं ये आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उसी में से कुछ साथियों के नाम हैं। निमिष शर्मा बिजनौर उत्तर प्रदेश से, रघुवीर सिंह, ओम प्रकाश जसपुर उत्तराखंड से, राकेश मीना, कुश कुमार गौर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, विक्रम राज बिश्नोई जोधपुर से, प्रियांशु मिश्रा, अमर सिंह घटवारिया अलावलपुर पलवल से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, अतुल भटोरे खरगोन मध्य प्रदेश से, नीरज कुमार औरंगाबाद से, रत्नेश सिंह और हंसराज तेली बूंदी से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।